आज है 30 जून दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। चीन ने भारत को इतिहास से सबक सीखने को कहा तो रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पलट कर जवाब दिया।
वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और है।
पर क्या चीन से टक्कर लेने की स्थिति में है भारत?
हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है कि ये जो टेंशन है इसको डिफ्यूज की जाए, क्योंकि ये चाइना के साथ टकरा लेना हिंदुस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है।
आज आधी रात से लागू होगा जीएसटी। परमाणु बम बनाने का असली श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को क्यों दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने?
1996 में उन्होंने रिजाइन कर दिया तो वो अब्दुल कलाम और चिदंबरम के साथ वाजपेयी के साथ गए और उन्होंने कहा कि बॉम्ब इज रेडी, सामग्री तैयार है, जब आप चाहे अब कीजिए।
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। भूटानी सरहद पर चीन के साथ उपजे विवाद के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीनी चेतावनी को खारिज कर दिया है। चीन ने कहा था कि भारत भूटान की सरहद से अपनी सेनाएं हटा ले। रिपोर्टों के मुताबिक चीन ने यह भी कहा था कि भारत को 1962 का युद्ध याद रखना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। इस बारे में पूछे जाने पर जेटली ने समाचार चैनल आज तक से कहा कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। जर्मनी की संसद ने एक बड़े बहुमत के साथ समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। यह बिल 60% से ज़्यादा समर्थन के साथ पारित हुआ। इसे संसद के कार्यक्रम में आखिरी समय पर जोड़ा गया था। इससे पहले चांसलर एंगेला मर्केल ने अपनी राय बदलते हुए इस विषय पर फ्री वोटिंग की इजाज़त दी थी। उन्होंने खुद इस बिल के खिलाफ वोट किया लेकिन उम्मीद जताई कि इससे सामाजिक शांति का दायरा और बढ़ेगा। इस बिल के बाद समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने समेत सारे वैवाहिक अधिकार मिल जाएंगे। एंगेला मर्केल की क्रिश्चियन सीडीयू पार्टी के समलैंगिक नेता डॉक्टर स्टीफन कॉफमैन ने कहा,
We have reached the full rights for gay couples, but you have also to fear a move back. So we have it also in Germany.
हम समलैंगिक जोड़ों के लिए पूर्ण अधिकारों के मुकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमें जागरूक रहना होगा कि अभी ये पक्का नहीं हुआ है। हमें संघर्ष करना होगा और हमें आने वाले महीनों और सालों तक संघर्ष करना होगा। ये थे स्टीफन कॉफमैन के शब्द। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादित ट्रैवल बैन शुक्रवार से आंशिक प्रभाव में आ गया है। छह मुस्लिम बहुल देशों के लोगों और सभी शरणार्थियों के लिए अमेरिका आना काफ़ी कठिन हो गया है। इस प्रतिबंध के प्रभाव में आने के बाद से अमेरिका बिना करीबी परिवार या बिजनेस संबंध वाले इन छह देशों के लोगों को वीज़ा देने से इनकार कर सकता है। ये प्रतिबंध ईरान, लीबिया, सीरिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर लागू किया गया है। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अपनी माँ का इंतज़ार कर रही हनादी अलहाज ने कहा,
It's not fair to feel the people who will come to the United States they are dangerous because you know
ये सोचना ठीक नहीं है कि जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं वे खतरनाक हैं, क्योंकि आप उन लोगों के लिए एक सी राय नहीं बना सकते। वे इस देश से हों या यमन, इराक, सीरिया या कहीं से भी हों, ये न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसे सबके लिए आसान बनाया जाना चाहिए। ये थे हनादी अलहाज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आई प्रतिष्ठित महिला पत्रकार मीका ब्रिजिंस्की ने कहा है कि राष्ट्रपति का अनियंत्रित व्यवहार व्यक्तिगत मामले से कहीं आगे बढ़ गया है। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में अपने सहयोगी टीवी प्रस्तोता जो स्कारबोरा के साथ लिखे साझा लेख में कहा कि अमरीका के कई नेताओं और सहयोगियों के साथ उन्हें भी इस पर संदेह है कि मिस्टर ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए फिट हैं। एक दिन पहले ट्रंप ने मीका को कम आईक्यू वाली क्रेजी मीका कहा था। 6 साल पहले हुए जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे के पहले आपराधिक मुकदमे में जापानी बिजली कंपनी तेपको के 3 पूर्व कर्मचारियों को दोषी नहीं पाया गया है। आरोपियों में से एक पूर्व तेपको चेयरमैन सुनेहिसा कात्सुमाता ने कहा कि परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले भूकंप और सुनामी की लहरों का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। इन तीनों कर्मचारियों पर पेशेवर लापरवाही का आरोप था। फुकुशिमा में हुई तबाही से लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे और इसे चेर्नोबिल हादसे के बाद सबसे बड़ा परमाणु हादसा कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि इराक के मोसुल शहर में परिवारों को ऐसी चिट्ठियां भेजी जा रही हैं जिनमें इस्लामिक स्टेट से कथित रिश्ते रखने वाले परिवारों को जबरदस्ती शहर से निकाल दिए जाने की धमकी दी गई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। भारत और चीन के बीच वाक युद्ध यानी जबानी लड़ाई जारी है। कल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत को सलाह दी थी कि वो भूटान के पास सीमा पार करके चीनी जमीन पर पहुंचे अपने सैनिकों को लौटा ले और इतिहास से सबक सीखे। ये बात किसी से छिपी नहीं रही कि दरअसल चीन भारत को 1962 की लड़ाई की याद दिला रहा था, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज तक टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में चीन की सलाह को हवा में उड़ा दिया। सुनिए एक रिपोर्ट प्रभात पांडे से।
टीवी चैनल आज तक के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन को जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि चीन भारत को इतिहास से सबक सीखने की सलाह दे रहा है तो क्या भारत चीन से निपटने के लिए तैयार है। इसके जवाब में जेटली ने कहा कि भारत अब काफी बदल चुका है।
याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और है।
भूटान की सीमा पर भारत और चीन के बीच पिछले दिनों तनाव पैदा हो गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच बयानबाजी अब भी जारी है। चीन का कहना है कि सिक्किम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय सैनिक चीन की धरती पर आ गए हैं। वो भारत से अपने सैनिकों को वापस लौटाने की मांग कर रहा है। इस सिलसिले में चीन के विदेश मंत्री ने गुरुवार को ये भी कह दिया कि भारत को इतिहास से सबक लेना चाहिए। दरअसल ये विवाद जिस जगह को लेकर सामने आ रहा है वहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। सिक्किम के डोंगलोंग क्षेत्र में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई हैं। चीन इस पर कड़ा इतराज जता रहा है। हालांकि भारत का कहना है कि ये जमीन चीन की नहीं बल्कि भूटान की है।
ये भूटान की भूमि है, भारत की सीमा के नजदीक है और भूटान और भारत का एक सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन देने का एक अरेंजमेंट भी है, और इसलिए भूटान ने ही स्वयं स्पष्ट कर दिया कि यह हमारी जमीन है और जो प्रेजेंट स्टेटस को है हमारी जमीन का, चाइना उसको अल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विषय एकदम स्पष्ट हो गया है। तो ये कहना कि हम वहां पर आएंगे, किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करेंगे जो चाइना कर रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं।
हालांकि गुरुवार को इस इलाके में चीन द्वारी आर्मी कैंप की तरफ किए जा रहे रोड निर्माण पर भूटान आपत्ति दर्ज करा चुका है। भूटान ने कहा था कि चीन को तत्काल काम बंद करना चाहिए और यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। डोंगलोंग एक विवादित इलाका है और भूटान का चीन के साथ लिखित समझौता है कि सीमा विवाद पर समाधान अभी विचाराधीन है और इस इलाके में शांति और यथास्थिति बनाए रखना है। इस तनाव के बीच चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला पास का रास्ता बंद कर दिया है। प्रभात पांडे, बीबीसी दिल्ली।
रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बयान में काफी आत्मविश्वास झलकता है। आप जानते ही हैं कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था, पर क्या वाकई 1962 के मुकाबले भारत बदला है? मैंने रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी से सवाल किया कि क्या 2017 में भारत चीन का सामना करने को तैयार है जैसा संकेत रक्षा मंत्री अरुण जेटली दे रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आ रही जेटली साहब किस दम पे ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि 1962 और 2017 में इंडिया ने काफी प्रोग्रेस किया है और मिलिटरीली भी काफी मजबूत हुई है इंडिया, मगर चाइना के मुकाबले में तो इंडिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तिब्बत प्लेटो में और उस पूरे रीजन में वो हिंदुस्तान से कोई 100% ज्यादा है। वहाँ उनका डिप्लॉयमेंट रेल का, उनका एयरफील्ड का, उनका हेलीपैड का, चाइना 6 डिविजन अपनी ट्रांसपोर्ट कर सकता है रेल के जरिए एक हफ्ते में उस फ्रंट तक, और हमारे हिंदुस्तान में जो 72 सड़कें बनानी थी उसमें से मसा ही 8 या 10 सड़कें बनी हैं उस एरिया में। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जेटली साहब कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को धमकाने के लिए हिंदुस्तान के पास कुछ मजबूती नहीं है और कुछ कैपेबिलिटी भी बहुत थोड़ी है।
चीन ने जब ये कहा कि हिंदुस्तान को इतिहास से सबक लेना चाहिए, वो इशारा था 1962 की लड़ाई का, तो भारत को कुछ न कुछ तो कहना ही था।
फौज तो कहती है कि हम जो भी हमारे पास है उससे हम लड़ेंगे। आर्मी चीफ ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 2.5 फ्रंट पे लड़ सकेंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और जो आधा है वो लोकल इंसर्जेंसीज जो चल रही हैं, ये 2.5 फ्रंट पे हम लड़ सकेंगे। मगर ये मेरे को लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये लोकल कंजम्पशन के लिए है, और शायद, मुझे इसका कुछ इलम नहीं है, मगर शायद बैक चैनल की भी टॉक्स हो रही होंगी, क्योंकि हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है कि ये जो टेंशन है इसको डिफ्यूज की जाए, क्योंकि ये चाइना के साथ टकरा लेना हिंदुस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है।
अच्छा, अगर बात हाथ से निकलने की, हालांकि उसकी कोई बहुत ज्यादा अभी आशंका नहीं है, इन केस अगर निकल गई तो क्या हिंदुस्तान के पास इतना मिलिट्री हार्डवेयर है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके मुकाबले, चाइना के मुकाबले कहाँ है, कुछ अंदाजा बताइए।
हिंदुस्तान की जो कैपेबिलिटी है और जो उनका एयरक्राफ्ट कंपैरिजन करें या हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कंपैरिजन करें तो हिंदुस्तान चीन के कहीं बराबर नहीं है, बहुत कम है। जैसे एयरफोर्स चीफ ने अभी इंटरव्यू दी है एक अखबार को, उसमें उन्होंने कहा है, एयर चीफ मार्शल धनोआ ने, कि उनके पास जो हवाई जहाज हैं वो काफी नहीं है ये टू फ्रंट वॉर के लिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने आर्मी चीफ को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। तो अगर ये बात आगे बढ़ी तो हिंदुस्तान का हाल थोड़ा इसमें खस्ता ही होगा और वो चीन का मुकाबला बहुत मुश्किल से कर पाएगा, क्योंकि ना ही उसके पास एयरक्राफ्ट है, ना ही हेलीकॉप्टर है, ना ही उस रीजन में आर्टिलरी है, ना ही कोई मिसाइल रेजिमेंट्स हैं, ना ही टैंक्स हैं। और एक रिपोर्ट और भी आई है अखबारों में कि चाइना एक 38 टन का टैंक भी टेस्ट कर रहा है वहां जहां ये झटपट हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की। और ये जो हाईवे बना रहा है इसको हाईवे 40 कहते हैं, मगर इसका ये मतलब है कि वो 40 टन का प्लेटफॉर्म उस पर चला सकता है। तो हिंदुस्तान का तो नाम निशान ही नहीं है, वहां सड़कें ही नहीं है, आज तक वहां टट्टू लेके जाते हैं सामान इंडियन आर्मी के लिए या वहां एयर ड्रॉप होता है, तो हम क्या बात कर रहे हैं ये चीन का मुकाबला करने की।
रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी, ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आज रात जब घड़ी 12 बजाएगी देश में एक सी कर प्रणाली लागू हो जाएगी। इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी कहा गया है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए संसद में एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खबर है कि सिने कलाकार अमिताभ बच्चन और मशहूर गायिका लता मंगेशकर को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता जुबैर अहमद इस वक्त स्टूडियो में मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपकी नज़र है आज रात को ऐसा संसद में क्या हंगामा होने वाला है कि हर आदमी उसकी बात कर रहा है।
देखिए, संसद के सेंट्रल हॉल को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहाँ पर जो कारपेट पुराना बिछा हुआ था उसको हटा के नए कारपेट लगाए गए हैं और जो साउंड सिस्टम है उसको भी बदला गया है ताकि जो 12 बजे, ठीक 12 बजे एक घंटा बजेगा और तब वो एक नए दौर का आगाज़ कहा जा रहा है कि होगा, जब 125 करोड़ लोग और 2 खरब डॉलर की जो इकॉनमी है वो सब एक हो जाएगा। मतलब एक किसी भी राज्य में आप जाएं एक ही तरह का जो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो नया रेजीम आ रहा है, नए दौर का जो आगाज़ हो रहा है, उसकी जो उसके लिए जो तकरीब की जा रही है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, वहाँ पर हज़ार लोगों को दावत दी गई है।
हालांकि अभी ये मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को हमसे ही सवाल पूछा जाए जीएसटी क्या है, तो बहुत जवाब नहीं मिल पाएगा। इस मुद्दे को लेकर के अपोजिशन ने बॉयकॉट किया है, कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी पार्टी बॉयकॉट कर रही हैं, आपके पास क्या जानकारी है?
देखिए, तृणमूल टीएमसी तो बिल्कुल तय है कि बॉयकॉट कर रही है, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है, मनमोहन सिंह को दावत दी गई थी जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी नहीं जा रहे हैं और जेडीयू के,
हाँ उन्हीं का सवाल है, वो क्या कह रहे हैं?
वो ये कह रहे हैं कि ये जश्न मनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और जनता दल यूनाइटेड के जो एक तरह से वो समर्थन दे रहे हैं इस जीएसटी रेजीम का, लेकिन उनका भी कहना था जब हमने केसी त्यागी साहब से बात की कि भाई आप लोग जा रहे हैं कि नहीं, तो उनका कहना था ये तो पास तो हो ही गया, अभी लब जाने की क्या ज़रूरत है।
एक तो इसको 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट से मिलाना, आज़ादी का अपमान करना, ऐसी कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना नहीं होने जा रही है जिसके लिए इतने बड़े जश्न की ज़रूरत है। जहाँ तक जीएसटी का प्रश्न है, दोनों संसदें निर्विवाद रूप से इसे पास कर चुकी हैं, 1 जुलाई से लागू हो रहा है, इसका विरोध भी चालू है और हम इसको इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं मानते।
तो आपकी पार्टी शामिल होगी?
हम इसको गंभीरता से नहीं ले रहे,
लेकिन होंगे शामिल?
नहीं, हमने ऐसा भी नहीं कहा, हम इसको कोई इवेंट ही बड़ा नहीं मानते।
तो जाएंगे ऐसे,
जाएंगे ना जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहली पास हो।
यानी केसी त्यागी हाँ ना उसके बीच में कहीं हैं। बहरहाल, आप आज रात को इस पर नज़र रखिए, कल सुबह 6:30 बजे वाले कार्यक्रम में इस पर आपकी रिपोर्ट हमारे श्रोता सुनेंगे।
बीबीसी इंडिया बोल।
1 जुलाई से लागू हो रहा है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे लेकर लोगों के मन में अब भी हैं तरह तरह के सवाल। कौन सी चीजें महंगी होंगी, क्या होगा सस्ता? अगर आपके मन में भी इसी तरह के हैं प्रश्न, तो इस शनिवार हमसे जुड़िए शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
21 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 96वीं जयंती थी। उन्हें भारत की नई बाजारवादी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। राव के राजनीतिक करियर में और भी कई उतार चढ़ाव आए, जिन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल।
जॉन एफ कैनेडी और फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी की जीवनी लिखने वाले नाइजल हैमिल्टन कहते हैं कि बायोग्राफी इज सिंपली द ऑर्फन ऑफ एकेडेमिया। अगर कोई नेता वो सब करता है जो ऐतिहासिक ताकतें उसके लिए अपरिहार्य कर देती हैं, तो फिर वो व्यक्ति उतना माने नहीं रखता जितना कि समय का वो क्षण। अगर आप इस संदर्भ में नरसिम्हा राव को देखें तो उनकी राजनीतिक पारी का एक तरह से अंत हो चुका था। रॉजर्स रिमूवल कंपनी का ट्रक उनकी किताबों के 45 कार्टन लेकर हैदराबाद रवाना हो चुका था। ये अलग बात है कि उनके एक नौकरशाह मित्र ने, जो शौकिया ज्योतिषी भी थे, उनसे कहा था कि इन किताबों को यहीं रहने दीजिए, मेरे हिसाब से तो आप वापस आ रहे हैं। विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लॉयन में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव इस हद तक रिटायरमेंट मोड में चले गए थे कि उन्होंने दिल्ली के मशहूर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था, ताकि अगर भविष्य में वो कभी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए तो उन्हें रहने की दिक्कत ना हो। तभी अचानक जैसे सब कुछ पलट गया। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस घटना के कुछ घंटों के भीतर यानी तड़के 22 मई 1991 को बीबीसी ने नरसिम्हा राव से संपर्क किया, जब वो नागपुर से दिल्ली जाने वाला विमान पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
आप श्री राजीव गांधी की मौत के बाद अपनी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं?
बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं समझता हूँ कि पार्टी इसको भी बर्दाश्त करेगी और अपनी ताकत को, अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेगी।
नरसिम्हा राव जी, मैंने दिल्ली फोन किया, कुछ प्रेक्षकों से बात की, कुछ हलकों से ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोग आपके नाम पर विचार कर रहे हैं कि आपको पार्टी का नेता नियुक्त किया जाए।
मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेरे विचार में तय करेगी। पार्टी की अपनी मशीनरी है। अब मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ, मैं अभी नागपुर से बोल रहा हूँ।
राजीव गांधी की हत्या के बाद जब विदेश से आए मेहमान शोक व्यक्त करने के बाद वापस चले गए, तो सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव रहे परमेश्वर नारायण हक्सर को 10 जनपद बुलवाया। उन्होंने हक्सर से पूछा कि आपकी राय में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कौन व्यक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है। हक्सर की सलाह थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली को जिम्मेदारी दी गई कि वो शंकर दयाल शर्मा का मन टटोलें। नटवर सिंह ने बीबीसी को बताया।
उन्होंने कहा कि अरुणा आसफ अली और नटवर सिंह को शंकर दयाल शर्मा के पास भेज दो, जो उपराष्ट्रपति हैं। अरुणा जी हमें चले गए शर्मा, और हमने वो उनका पैगाम दिया कि सोनिया जी चाहती है कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए कांग्रेस के, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई एक बहुत बड़ी बात की है सोनिया जी, मेरा धन्यवाद दीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर के लिए 18-20 घंटे काम करना पड़ता है, अब मेरी उम्र और स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, तो मैं माफी चाहता हूँ। तो हम दंग रह गए साहब। तो फिर गए साहब, फिर बुलाए हक्कर साहब को। हक्कर साहब ने कहा कि नरसिम्हा राव को बुला लो। इतने नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे।
नरसिम्हा राव भारतीय राजनीति के उबड़ खाबड़ धरातल से ठोकरे खाते हुए सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। इस पद को पाने के लिए उन्होंने किसी राजनीतिक पैराशूट का सहारा नहीं लिया था। राव का कांग्रेस और भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह की खोज। विनय सीतापति बताते हैं।
जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए June 21, 1991, बहुत से चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे। एडुकेशन, हेल्थ में वो एक्सपर्ट थे। वो आंध्रा में एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर बन चुके थे और यूनियन मिनिस्टर भी बन चुके थे दिल्ली में, फॉरेन अफेयर्स में वो एक्सपर्ट थे, सो इंटरनल सिक्योरिटी में वो एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिक्स में वो एक्सपर्ट नहीं थे. उनको एक चेहरा चाहिए, एक मुखौटा चाहिए था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन IMF और डोमेस्टिक ओपोनेंट्स को एसुएज कर सके, उनको वो ज़रूरत थी. June 19, 1991 नरसिम्हा राव पास में विलिंगडन क्रेसेंट में थे, PC अलेक्जेंडर उनके सबसे बड़े एडवाइज़र हैं और नरसिम्हा राव PC अलेक्जेंडर से पूछते हैं, आई वॉन्ट एन इंटरनेशनली क्रेडिबल फेस एज फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज़ द कोट. अलेक्जेंडर ने उनको कहा कि आप IG पटेल से पूछिए, IG पटेल ने नहीं कहा. फिर PC अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम बोला. तो उस रात June 20th इवनिंग, वन डे बिफोर दी स्वेरिंग इन सेरेमनी, PC अलेक्जेंडर ने रात को मनमोहन सिंह को फ़ोन किया. तब मनमोहन सिंह जी सो रहे थे क्योंकि वो फॉरेन से आए थे और फिर उनको उठाया गया और उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग June 21st 12 बजे स्वेरिंग इन सेरेमनी वो स्केड्यूल्ड. मेरे ख्याल से 8-9 बजे सुबह मनमोहन सिंह जी अपने घर से UGC ऑफिस गए, वो UGC चेयरमैन थे, और वहाँ पर एक फ़ोन कॉल आया. नरसिम्हा राव फ़ोन पे थे, उन्होंने कहा कि भाई आई वॉन्ट यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, आप 12 बजे स्वेरिंग इन है, आप एक घंटे पहले आइए क्योंकि मुझे वो स्पीच के बारे में बात करना है, तो आप एक घंटे पहले आइए. और फिर नरसिम्हा राव ने उनको कहा कि इफ़ वी सक्सीड वी विल बोथ गेट द क्रेडिट, इफ वी फेल यू विल हैव टू गो.
लेकिन नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी किरकिरी हुई जब केंद्र सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया. कांग्रेस के अंदर और बाहर भी कई लोगों ने इसके लिए नरसिम्हा राव को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन विनय सीतापति इस मामले में नरसिम्हा राव को क्लीन चिट देते हैं.
नवंबर 1992 में दो डेमोलिशन प्लान हुए थे, एक था बाबरी मस्जिद का, BJP और संघ परिवार प्लान कर रहे थे, और दूसरा था नरसिम्हा राव का और अर्जुन सिंह और उनके जो राइवल्स हैं कांग्रेस पार्टी में वो प्लान कर रहे थे. पूरे नवंबर में नरसिम्हा राव ने बहुत कोशिश की कि सबको डिसीशन मेकिंग में इंक्लूड करें. नवंबर 92 में 5 या 6 CCPA कैबिनेट मीटिंग्स थे, उस मीटिंग्स में एक भी कांग्रेस कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं कहा कि कल्याण सिंह को अभी निकालना चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर कि ओनली वेन लॉ एंड ऑर्डर हैज़ ब्रोकन डाउन कैन यू डिसमिस अ गवर्नमेंट, नॉट वेन लॉ एंड ऑर्डर इज अबाउट टू ब्रेक डाउन. तो नरसिम्हा राव चाहते थे कि कोई और कहे कि प्लीज़ आप प्रेजिडेंट्स रूल इम्पोज करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो दे चोज टू ट्रस्ट कल्याण सिंह. ज्योति बसु भी आपके उनके स्पीचेस देखिए नवंबर 92 में, वो कह रहे हैं कि यूजुअली वी डोंट सपोर्ट प्रेजिडेंट्स रूल बट इफ देर इज नो अदर वे टू प्रोटेक्ट द मॉस्क वी विल एग्री टू डिसमिस कल्याण सिंह. वो ये नहीं कह रहे थे कि वी डोंट ट्रस्ट कल्याण सिंह को अभी निकालो. ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है कि अगर सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के बीच में लड़ाई हो तो कौन जीत सकता है.
तो ये जो थ्योरी है कि उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और वो पूजा में लग गए और उन्होंने कोई फोन कॉल्स नहीं किए,
ये थ्योरी देखिए कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे. एक सीनियर जर्नलिस्ट ने अपने बुक में लिखा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, तो ये दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ दैट रूमर. तो फिर आप देखिए कि उनको कैसे पता था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, क्या वो वहां पे थे? नहीं, उन्होंने पुस्तक में लिखा कि हम वहां पे नहीं थे बट एक सोशलिस्ट पॉलिटिशियन मधु लिमये ने मुझे कहा था कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे हियर से. फिर आप पूछिए कि मधु लिमये को कैसे पता है कि वो पूजा कर रहे थे, वो तो वहां पे नहीं थे. तो मधु लिमये ने खुद कहा कि मेरा एक सोर्स है PMO के अंदर जिन्होंने मुझे कहा कि नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे. तो आप देखिए, ये एक रूमर है, आप मुझे पूछ रहे हैं ये रूमर, और जस्ट आप जाके देखिए कि ये रूमर के पीछे एविडेंस कहाँ है.
मैंने मशहूर पत्रकार सईद नकवी से पूछा कि क्या नरसिम्हा राव को इस मामले में ज्यादा से ज्यादा एरर ऑफ जजमेंट का दोषी माना जाए.
वो और चौहान दोनों, यानी दोनों खामोश बैठे रहे पूरे दिन. उनके होम मिनिस्टर थे, मस्जिद दिन भर गिर रही है और रात को उनके अफसरान हमको दिखाई देते हैं यहाँ पार्टी में, तो सब तिलक लगाए हुए, यानी गोया जैसे सेलिब्रेशन करके आ रहे. वो एक मुबहम मामला है, मैं एलिज नहीं करूँगा कुछ, लेकिन असर जो मुसलमानों पे हुआ उसके बाद ये कि 140 सीटें आ गई, कभी इतने कम कांग्रेस के नंबर नहीं हुए थे, डिफेक्ट करके चला गया, उसके बाद पार्टी ख़त्म हो गई, फिर वो रिवाइवल हो ही नहीं पाया.
6 दिसंबर 1992 को जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, उस समय राव की मनोदशा क्या थी, उसके एक और चश्मदीद गवाह हैं उनके उस समय के निजी चिकित्सक डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी.
मैं पहले तो अचंभा रह गया था टेलीविजन पे देख के, तो मुझे भी धक्का लगा जो मैं देख रहा था। मेरे मन में ये आया कि प्राइम मिनिस्टर पे क्या बीतती होगी, स्ट्रेस बढ़ गया होगा उनका बहुत ज्यादा। तो एक डॉक्टर का फर्ज निभाने मैं चला गया वहाँ पे। वो घेरे हुए थे वहाँ पे अपने ऑफिस में अपने ऑफिसर्स के साथ। मुझे देख के एकदम अचंभा हो गया, फिर कहा कि क्यों आए इस वक्त। तो मैंने कहा कि सर आप थोड़ा इस बाजू वाले कमरे में आ जाइए। वहाँ पे आए, फिर थोड़ा नाराज थे। नहीं नहीं, इस वक्त थोड़ी है देखना है मुझे, इस वक्त मैं बिजी हूँ। मैंने कहा जी नहीं, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खाली ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लूंगा। तो उस समय देखा कि उनका चेहरा लाल था, काफी एजिटेटेड थे। तो मैंने ब्लड प्रेशर लिया, काफी ज्यादा था, पल्स रेट भी देखा तो उसकी गति बहुत तेज थी। तो मैंने कहा सर थोड़ा दवाई मुझे और देनी पड़ेगी आपको। तो दवाई जो मैंने दिया वो ले लिए, चले गए अंदर।
डॉक्टर रेड्डी कहते हैं कि राव की जांच से ये आभास नहीं हुआ था कि उनकी इस ट्रेजेडी में कोई भूमिका थी। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। सोनिया की पसंद पर प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव और सोनिया के बीच 1993 आते आते काफी दूरी बढ़ चुकी थी।
91 से 93 तक महीने में दो बार वो टेंशन पर जाते थे और हफ्ते में दो बार वो फोन पे सोनिया गांधी जी के साथ बात करती थी। और कभी कभार जब नरसिम्हा राव टेंशन पर फोन करते थे तो सोनिया गांधी सेक्रेटरी वुड कीप हिम वेटिंग फॉर 4-5 मिनट्स व्हाइल सोनिया गांधी केम ऑन द फोन। तभी उन्होंने कहा कि आई डोंट माइंड बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माइंड्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी ने डेलिबरेटली ये किया, पर जब ऐसे हुआ तो नरसिम्हा राव को चोट तो लगी।
सीतापति इस किताब में रहस्य उद्घाटन करते हैं कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार बनी थी तो उन्होंने नरसिम्हा राव का समर्थन लेने की कोशिश की थी। इसकी पुष्टि करते हुए नरसिम्हा राव के ज्योतिषी और राजनीतिक सलाहकार रहे पंडित एनके शर्मा कहते हैं,
देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हमको जानते थे, उन्होंने बेंगलोर में हमको आदमी भेजा। उन्होंने तीन चीजें कही थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से ये प्रस्ताव था कि नरसिम्हा राव के ऊपर जो तीन केसेस चल रहे हैं, सेंट किट्स, जेएमएम, लखू भाई पाठक, तीनों केस निरस्त हो जाएंगे। 1997 में वो भारत के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। केवल और केवल हमें इस प्रस्ताव के ऊपर मदद की बात है। जब ये बात मैंने नरसिम्हा राव से कही, नरसिम्हा राव ने कहा जिस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैं विदेश मंत्री रहा, गृह मंत्री रहा, शिक्षा मंत्री रहा और अब 5 साल तक प्रधानमंत्री रहा, आज कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, पार्टी के हितों के साथ समझौता करके मैं अपने फायदे के लिए काम कैसे करूं। उन्होंने ठोकर मारी उस ऑफर को।
हालांकि वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, लेकिन विनय सीतापति कहते हैं कि भारतीय परमाणु परीक्षण के असली पिता में नरसिम्हा राव थे।
2004 में जब नरसिम्हा राव का देहांत हुआ, एन इमोशनल अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इट इज नॉट आई, नरसिम्हा राव इज द ट्रू फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो सबने सोचा कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबने कहा कि 1998 में वाजपेयी वॉज द वन हु गेव परमिशन फॉर एक्सप्लोजिंग न्यूक्लियर टेस्ट, तो वो ऐसे क्यों कह रहे हैं। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज इन इट्स इन्फेंसी, तो उन्होंने पैसे भी दिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज दी, और फिर मैंने ये भी दिखाया कि उन्होंने अमरीकी प्रेशर को कैसे निकाल दिया। जब वो 1996 में उन्होंने रिजाइन कर दिया तो वो अब्दुल कलाम और चिदम्बरम के साथ वो वाजपेयी के साथ गए और उन्होंने कहा कि बॉम्ब इज रेडी, सामग्री तैयार है, जब आप चाहे अब कीजिए।
नरसिम्हा राव के जीवन की सांधबेला में स्वयं उनकी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। वो बहुत एकाकी और अपमानित होकर इस दुनिया से विदा हुए। न सिर्फ उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को भी कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के अंदर नहीं आने दिया गया। शायद कुछ समय बाद ही इतिहास उनका सही मूल्यांकन कर पाए।
रेहान फजल की विवेचना और चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। अरुण जेटली का चीन को जवाब, 1962 से बदल चुका है भारत। जर्मनी की संसद ने दी समलैंगिक विवाह को मंजूरी, 60% से ज्यादा समर्थन के साथ पारित हुआ विधेयक। अमल में आया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादित ट्रैवल बैन, 6 देशों के लोगों का अमरीका आना हुआ बहुत कठिन। जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे के मामले में बिजली कंपनी तेपका के 3 पूर्व कर्मचारी बरी। बीबीसी समाचार।
और समाचारों के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। राजेश जोशी को अनुमति दीजिए, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने। कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभरात्रि।